Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Adhyay 10, Shlok Sankhya 37 and 38. Is Adhyatmik Gyan mein pravesh karne se pehle, Guru aur Gauranga se Kripa ki yachna karte hue Mangala charan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain, uska pura pura labh prapt ho sake, jo ke hai Krishna prem ki prapti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobheshtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahayam Danati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha. Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam tam sajivam sadvaitam savadutam parijana sahitam Krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna pada sahakana lalita Shri Vishakhanvitamsa. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suta Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Shrunu Sushruni Vakshami Gita Susthiti Matmanah Vaktrani Panchajanihi Panchadhyayananukrama Dashadhyayan Bhujashaikam Udaram Dau Padam Bhuji Evam Ashtadashadhyayo Vangmayi Murti Ishwari. Srimad Bhagavad Gita Mata Ki Jai Ho. Adhyay 10, Shlok Sankhya 37 and 38. Bhagavan Sri Krishna ke mukharvin se nikle hue in atyant hi pavitra shabdon ko mere saath saath ucharan karne ka priyas kijiye. Bhagavan kehte hain, Vrishninam Vasudevosmi Pandavanam Dhananjaya Muninam Apyaham Vyasaha कविनां कुशीना कवि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां अप्यहं व्यासः कविनां कुशीना कवि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कविनां कुशीना कवि शब्दात् वृष्णीनाम अर्थात वृष्णी कुल में वासुदेव द्वारिका वासी कृष्ण अस्मि मैं हूँ पांडवा नाम यानी पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन मुनि नाम यानी मुनियों में अपि भी अहम मैं हूँ व्यास यानी वेद व्यास जी जिन्होंने समस्त वेदों के संकलन किया संकलन करता है जो कवि नाम यानी महान विचारकों में उष्णा कवि अर्थात शुक्राचार्य विचारक मैं हूँ अनुवाद और तात्पर्य
कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील
प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय हो अनुवाद भगवान कहते हैं मैं वृष्णी वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ शपपा जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं हैं। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश यानी व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश यानी पृथकृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पट्टू विद्वानों में व्यासदेव बड़े हैं क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों के को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचानं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर भगवान अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। आज भगवान अत्यंत ही सुंदर विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वृष्णी नाम यानी जितने भी ऋषि वंशी हैं उन्होंने वासुदेवोस्मी। वासुदेव का मतलब होता है वसुदेव के पुत्र। अब वसुदेव के एक पुत्र नहीं थे, वसुदेव के दूसरे तो सात पुत्रों को कंस ने मार डाला था, लेकिन दो पुत्र जीवित हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे बलराम जी। क्योंकि ये जो भगवान बता रहे हैं अभी अर्जुन को, वो अपने अपने विषय में नहीं बता रहे, अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। तो भगवान जो विभूतियां हैं उनके विषय में बताएंगे ना, अपने बारे में नहीं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया ये जो वासुदेव लिखा हुआ है ना, वो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण अपने विषय में बता रहे हैं, बल्कि भगवान वासुदेव जो है वो बलराम जी को कह रहे हैं। क्योंकि जो वसुदेव के पुत्र होंगे वो वासुदेव होंगे, तो बलराम जी भी तो वसुदेव के पुत्र हैं, तो वो भी वासुदेव हैं। तो भगवान क्योंकि अपनी अपोलेंसेस के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, तो श्री जीव गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो वासुदेव उसमें यानी बलराम जी के विषय में लिखा हुआ है। इससे पहले भी जो भगवान ने बताया था कि श्लोक नंबर 31 में भगवान ने कहा था रामः शस्त्र भृतामः, के शस्त्र चलाने वालों में मैं राम हूँ। तो क्योंकि ये अवतार का सेशन नहीं है, ये विभूतियों का सेशन है, तो श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि वो जो राम लिखा हुआ है कि शस्त्र चलाने वालों में मैं राम हूँ, तो वो इंगित करता है परशुराम को। परशुराम भी भगवान के अवतार है, परंतु वो भगवान की शक्ति आवेश अवतार है। जैसे यहाँ पर भगवान आगे बता रहे हैं मोने नाम अप्यहम व्यास, तो भगवान की लीला अवतार अलग होते हैं, भगवान की शक्ति आवेश अवतार अलग होते हैं। जैसे बलराम जी जो हैं वो भी भगवान के अवतार हैं। इसमें भगवान ये जो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने भी इस विषय में बताया, अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। तो ये जो भगवान के जितने भी अवतार हैं वो बलराम जी से आते हैं, इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं ऋषिणाम वासुदेव उसमें। तो भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश यानी व्यक्तिगत या सुखीय अंश कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा अभी भगवान के अंश डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो बहुत ज्यादा भगवान के निकटतम अंश होते हैं उनको व्यक्तिगत अंश कहा जाता है या स्वकीय अंश कहते हैं, और दूसरे जो अंश होते हैं उनको क्या विभिन्न अंश। जैसे हम सब भगवान के अंश हैं लेकिन हम पृथ्वीकृत हैं, हम भगवान के व्यक्तिगत अंश नहीं है, लेकिन जो दूसरे जैसे बलराम जी और व्यास देव जी वो भगवान के निकटतम अंश है, ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार भी होते हैं इनसे। और बलराम जी से तो सारे अवतार जो हैं वो प्रकट हुए हैं। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक और भी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि अगर इस वास ये ऋषिणाम वासुदेवोस्मी अगर इसको आप कृष्ण भी मानते हो तो इसको आप द्वारिकाधीश मान सकते हो, लेकिन इसको भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वो नहीं मान सकते, क्योंकि वो जो है उनके लिए कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति। तो भगवान का ये भी एक अंश है, जो भगवान वसुदेव वो अलग नहीं है, ये जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बता रहे हैं वो कोई अलग नहीं है, लेकिन वो भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन है वो कभी भी ब्रज को त्याग कर एक क्षण के लिए भी पांव अलग वहां से नहीं हटाते। इसलिए देखो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वसुदेव कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में अभी और क्या है, चूंकि कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। समझ में आ कि वास्तव में कृष्ण जो हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जिनसे जिनके प्रेम की प्राप्ति करनी है, वो कृष्ण कौन से हैं? ब्रजेंद्र नंदन। वो हर एक को प्रेम का खुला आमंत्रण देते हैं कि अगर आपको उनके साथ सखा बनना है तो सखा बन जाइए, यदि प्रियतम बनना है तो प्रीतम बन जाइए, यदि उनको अपना पुत्र बनाना है तो पुत्र बन जाइए, अगर उनका पिता बनना है तो पिता बन जाइए। जो भी आपको उनके साथ संबंध स्थापित करना है, वो भगवान जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रजेंद्र नंदन है, और अन्यत्र जितने भी उनके दूसरे स्वरूप हैं, चाहे जहां भी पाए जाते हैं, जो भी अवतार हैं, वो सब उनके विस्तार हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग सोचते हैं तो भले हम द्वारिकाधीश को भी वृषणा वासुदेवस में जान सकते हैं, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें यहाँ पर कहा है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो एक ही है। वासुदेव भी कृष्ण के विस्तार है और कृष्ण से भिन्न नहीं है, अतः इस श्लोक में आगत वसुदेव शब्द का अर्थ है बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से सारे जितने भी अवतार हैं उद्गम उनका हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वृषणाम वासुदेवोस्मी, और आगे कहा पांडवानाम, जब इतना भगवान ने बोला पांडवानाम, तभी अर्जुन के मन में आया भगवान अभी बोलेंगे पांडवानाम युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर बोलेंगे ना, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज है और बड़े भाई भी हैं, तो भगवान अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पांडवों में जो ग्रेटेस्ट है वो तो धर्मराज युधिष्ठिर है, तो उसका नाम बताएंगे, लेकिन भगवान ने फौरन कहा पांडवानाम धनंजय। कृष्ण ने जब ऐसे बोला धनंजय, तब अर्जुन सरप्राइज, उनको इतना इंटरेस्टिंग लगा कि पांडवों में अर्जुन धनंजय यानी अर्जुन है, युधिष्ठिर नहीं है, तब तो उनको ऐसा बोलना चाहिए बस कृष्ण आप पांडवों में जब तुम अर्जुन हो फिर तुम्हारे बारे में सुनने की क्या जरूरत है, वो तो मैं ही हूँ, वाओ आई एम द गॉड, अभी मैं ही कृष्ण बन गया हूँ, भगवान ने खुद कहा अपने मुख से पांडवानाम धनंजय, तो समझो मैं और कृष्ण बराबर है। लेकिन ये मायावादी फिलोसफी है कि जीव और कृष्ण एक बराबर है, ये ऐसा नहीं है। भगवान इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं पांडवानाम धनंजय क्योंकि अर्जुन कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं, और अर्जुन वो व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्ण का चुनाव किया था। जब अर्जुन के सामने संपूर्ण नारायणी सेना और कृष्ण को चुनने का प्रश्न प्राप्त हुआ था, वो भी युद्ध के समय में, अब युद्ध के समय में कोई अकेले एक निहत्थे व्यक्ति को चुनेगा या उसकी सेना को चुनेगा? अगर थोड़ी सी भी बुद्धि इस भौतिक जगत वाली किसी के पास है तो वो डेफिनेटली भगवान की सेना को चुनेगा क्योंकि उसको युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन भी व्यक्ति है, लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जो संपूर्ण भौतिक इंद्रियों के भोग को त्याग कर, जो अन्य समस्त वस्तुओं को त्याग कर कृष्ण को चुनता है, वही वास्तव में कृष्ण का स्वरूप है। तो क्योंकि कृष्ण को अर्जुन ने संपूर्ण सेना को छोड़कर कृष्ण को चुना, इसलिए कृष्ण कहते हैं पांडवानाम धनंजय। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पांडव पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। धनंजय का मतलब है कि जिन्होंने बहुत सारे धन को अर्जित किया हो, धन को जमा किया हो, एकत्रित किया हो, तो इसे अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। और भगवान क्या है? वो लक्ष्मीपति हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, जितने भी पुरुष हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन है, अतः वो कृष्ण का स्वरूप है। आगे भगवान कहते हैं मुनि नाम अप्यहम व्यास, बहुत सारे मुनि होते हैं और मुनियों का कार्य क्या होता है? वो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उनमें एक्सपर्ट होते हैं। जो मुनि होते हैं वो सारे वेदों और शास्त्रों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं। अब ये व्यासदेव वो मुनि हैं जिन्होंने सारे वेदों का संकलन किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि द्वापर युग में द्वापर युग तक यानी कलयुग से पहले तक वेद जो थे वो लिपिबद्ध नहीं होते थे, वो केवल गुरु शिष्य के हृदय में ज्ञान देते थे और उनको कंठस्थ हो जाते थे, फिर दूसरों को ज्ञान मिलता था, इस तरह से गुरु परंपरा चलती थी। लेकिन वेद व्यास जी ने यह सोचा कि अब कलयुग के लोगों के पास तो इतनी बुद्धि है नहीं कि वो सारे शास्त्रों को जो जो श्रवण करेंगे उसको याद रखेंगे, प्रायः अल्प आयुष सभ्य, उनकी आयु कम होगी, मंदा सुमंद मतयो, उनकी बुद्धि भी कम होगी, वो याद भी और उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाएगी, तो फिर भला वो शास्त्रों को कैसे याद कर सकेंगे, मेमोराइज कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, बोला अभी मैं क्या करता हूँ, सारे जितने भी ज्ञान जो भी ज्ञान है भगवान की तरफ से आया हुआ उन सारे वेदों को लिपिबद्ध करता हूँ, लिख देता हूँ। और सारे वेदों को लिख लिया उन्होंने, सारे शास्त्रों को, महाभारत, भगवत गीता और अंत में श्रीमद् भागवतम महापुराण को लिखने के बाद उन्होंने यह निर्णय दिया कि क्योंकि श्रीमद् भागवतम सारे वेद और शास्त्रों का परिपक्व फल है, तो उसी भागवतम महापुराण को पढ़ने से, श्रवण करने से जीव को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो ऐसे वेद व्यास जी जिन्होंने सारे वेदों का संकलन किया है उनके विषय भगवान कहते हैं, दूसरे मुनि तो क्या करेंगे, एक आध वेद को याद करेंगे, पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महान तो वो है जिन्होंने इन सारे वेदों को लिखा है। वो कृष्ण के शक्तियाविष अवतार भी माने जाते हैं और वो कृष्ण के स्वरूप है। आगे भगवान कहते हैं, कवि नाम उष्णा कवि, कवि मतलब जो किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ हो, कोई भी टॉपिक हो उसको बहुत सीरियसली समझने, विचार करना, विचारकों, यानी श्री प्रभुपाद ने कहा महान विचारकों ने, तो ऐसे कवियों में से भगवान ने कहा है उष्णा कवि नाम उष्णा कवि, जो शुक्राचार्य जो कि राक्षसों के गुरु हैं, वो भगवान कहते हैं सारे कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, वे अत्यधिक बुद्धिमान और दूरस्थ राजनेता थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। जब श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में वामन देव की जब कथा आती है, तब वामन देव जो है वो उष्णा से पूछते हैं, शुक्राचार्य से पूछते हैं यज्ञ के विषय में, कि आप मुझे यज्ञ के विषय में बताइए। तो उन्होंने बताया कि मंत्र संत्र छिद्रम, उन्होंने मतलब ऐसे बताया कि जब कोई कृष्ण के नाम का जप करता है, प्रेम से यदि कोई कृष्ण का नाम ले रहा होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जिसने भगवान के पवित्र नाम का जप कर लिया तो उसे अन्य किसी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है, भले वो शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, अपने कर्मों के अनुसार उनका ऐसा था, उनकी रुचि एक जगह फिक्स हो गई थी और वो उसी के अनुसार कार्य कर रहे थे, अपने कर्मों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन यहाँ पर यह पता चलता है कि वो हरिनाम की महिमा को जानते थे। तो जो हरिनाम की महिमा को जानते हैं, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कवि नाम उष्णा कवि। बेशक श्री प्रभुपाद जी ने भी कहा वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत दूरस्थ थे, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्लोक नंबर 38, भगवान कहते हैं दंडो दमय तामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्याना ज्ञानम ज्ञानवता महं दंडो दमय तामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्याना ज्ञानम ज्ञानवता महं। शब्दार्थ दंडो दमय तामस्मि, दंडो मतलब दंड, दमयता मतलब दमन कर, दमन के समस्त साधनों में से अस्मि मैं हूँ। नीति, नीति मतलब सदाचार, अस्मि मैं हूँ। जिगीषताम मतलब विजय के आकांक्षियों का आकांक्षा करने वालों में मैं क्या हूँ, नीति हूँ। और आगे मौनम यानी चुप्पी, मौन। च तथा एव भी अस्मि मैं हूँ। गुहियानम रहस्यों में। ज्ञानम अर्थात ज्ञान। ज्ञानवताम यानी ज्ञान, ज्ञानियों में अहम यानी मैं हूँ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे तो दमन करने के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश करना। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण भावना, कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन करने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दंडो दमयतामस्मि। दमयता मतलब दमन के समस्त साधनों में, दमन मतलब कंट्रोल करने वालों में। देखो अगर कोई अपराध करता है तो उसको कंट्रोल करने के, अपराध को कंट्रोल करने के बहुत सारे साधन होते हैं, और शास्त्रों में उसको चार साधन बताया गया, साम दाम दंड भेद। साम का मतलब होता है अगर कोई गलती कर रहा होता है, नियम का उल्लंघन कर रहा होता है, तो सबसे पहले उसको थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, सबसे पहले उसको समझाना चाहिए। जैसे बच्चा अगर हमारे घर में कोई गलती कर रहा है तो हमें उसको समझाना चाहिए, देखो बेटा ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, आईना से आप ऐसा मत करना। तो पहला है साम, और उसके बाद है दाम। दाम का मतलब होता है कि अगर आप किसी से अच्छाई करवाना चाहते हो, मतलब चाहते हो कि वो बुराई नहीं करे, तो आप कुछ दाम चुकाओ। दाम चुकाओ मतलब उसको कुछ गिफ्ट दो, ऐसे दाम दो उसको। जैसे अगर आप घर पे अपने बच्चों को ये कहना चाहते हो कि भाई आप क्या करो, जप करो, आज आज आपको माला करनी है, सुबह को माला करना, शाम को माला करना, उसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी चॉकलेट मंगा के दूंगी, अगर आप माला करोगे तो मैं आपको गिफ्ट में चॉकलेट दूंगी या कोई टॉय दूंगी, खिलौना दूंगी। तो फिर इससे क्या होगा कि आप वो बगैर समझाने से, सिर्फ समझाने में उसको कुछ लग रहा नहीं है कि मेरा क्या फायदा होगा, और उसके बाद जब उसको कुछ मिल रहा है तब वो उस गिफ्ट की लालच में ही भले कार्य करेगा, लेकिन ऐसे धीरे धीरे जब नाम जप करेगा तो हृदय पवित्र होगा, और फिर बाद में सीरियस होगा तो उसके बाद वो करेगा। लेकिन फिर कभी अगर वो उससे भी नहीं मानता है तो उसके बाद क्या आता है, साम दाम दंड। फिर आप उसको पनिशमेंट दो, अगर तुमने माला, आज तुम पूरा दिन हो गया तुमने माला भी नहीं उठाई, सारा दिन टीवी पे बैठे हुए थे, मैं आपको थप्पड़ मारूंगी अभी, मतलब दंड देना उसको। कभी कभी ऐसा होता है लातों के बूत जो है वो बातों से नहीं मानते, कितना उनको समझाया जाता है तो वो मानते नहीं है। जैसे बच्चा ना ट्यूशन का कार्य करके नहीं जाएगा, और ट्यूशन वाली बोलेगी कोई बात नहीं आज नहीं किया कल के करके आना, फिर वो बोलेगी कोई बात नहीं आज भी नहीं किया कल करके आना, तो बच्चा कभी भी सुधरेगा नहीं। उसको उसको दंड मिलेगा ना पहले समझाने से, उसके बाद कुछ ना कुछ बोलने से, भाई ये प्राप्त हो जाओगे, आपको गुड दूंगी, ये दूंगी, और अगर उससे भी नहीं तो फिर दंड देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि लातों के भूत है ना, वो बातों से नहीं मानते। तो यहां पर दंड एक ऐसी है कि उससे फिर वो भय से भी कार्य करेगा, भले उसकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी उसे पता है कि इसकी बदली में तो मुझे दंड मिलेगा, तो फिर वो भय से भी कार्य करेगा। जैसे अभी क्या है हमारे लिए ये प्रभात साधना जो है वो बहुत ज्यादा गुरु का आदेश है कि आपको प्रभात साधना करनी है, हम समझते भी हैं कि हमारे लिए आवश्यक है, हमें अवश्य करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, सुबह को तुलसी पूजा करनी चाहिए, गुरु आरती करनी चाहिए और सुबह को ही अपनी चैंटिंग कम्प्लीट होनी, लेकिन हमें ये पता भी है और उसका मतलब साम पता है और दाम भी पता है कि इसका बेनिफिट क्या होगा, गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, एक भक्ति के लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि दंड नहीं है ना, हमें ऐसे कोई अगर हम मंगल आरती पर नहीं उठते हैं तो कोई थप्पड़ नहीं मारता हम लोगों को, कोई हमको दंड नहीं दिया जा रहा कि आज तुम्हें पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा तुम्हें मंगल आरती नहीं, ऐसा अगर होता ना कोई रूल, ऐसा कोई सिस्टम होता ना, तो फिर सारे भक्त जो है ना वो बहुत पंक्चुअलिटी के साथ अपनी प्रभात साधना करते, अपना ना जब कंप्लीट करते सुबह को ही, क्योंकि कोई रूल नहीं है ना। आज जो कोई भी कार्य अगर कोई हम कर रहे होते ना तो उसमें थोड़ा सा जब भय होता है ना भय, तो वो कार्य बहुत डिसिप्लिन के साथ करते हैं, वरना तो क्या होता है ग्रेजुअली हम बहुत वीक होते जाते हैं वो कार्य करने में। इसलिए कहते हैं फियर ऑफ गॉड इज द बिगनिंग ऑफ डिवोशन, शुरू भक्ति कहां से होती है, हृदय में थोड़ा सा भय होना चाहिए भगवान का, भय होगा ना तो उसके द्वारा हम कार्य करेंगे, बट दिस इज द बिगनिंग ऑफ डिवोशन, ये स्टार्ट है, दिस इज नॉट एंड। एंड ऑफ द डिवोशन क्या है, लव ऑफ गॉड भगवान। फिर जब हृदय के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम हो जाएगा ना कृष्ण से, जब प्रेम हम बोलते ना भगवान से प्रेम, तो प्रेम जब हो जाएगा फिर हम कोई भी भगवान की सेवा में हम ये नहीं सोचेंगे कि इस वक्त मेरी इच्छा हो रही है या नहीं हो रही है, मेरा ये शरीर कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे सोने का दिल कर रहा है या मुझे कुछ और कार्य करने का, बस भगवान को प्रसन्न करने का यही तरीका गुरु महाराज ने बताया है तो मुझे उसी को फॉलो करना है, फिर उसकी बदली में चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों नहीं हो रहा हो, चाहे मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बुखार हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि गुरु महाराज ने जो कृष्ण को प्रसन्न करने का साधन बताया ना वो यही है, तो फिर वो जब प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है फिर दंड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब तक प्रेम जो है वो उत्पन्न नहीं होता है फिर तब तक हमें दंड से कार्य, दंड जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय कार्य करता है। इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि वो प्रेम तो आध्यात्मिक हो गया ना, इस भौतिक जगत में जो दमन करने वाले हैं उनमें भगवान कहते हैं मैं दंड हूं। दंड किससे निकला, डंडा, डंडे से निकला, तो डंडे से जो काम हो जाता है ना कंट्रोल का, वो सबसे ज्यादा इजीएस्ट और सबसे ज्यादा परफेक्ट कार्य होता है, वरना दूसरी बातों में आजकल कोई साम दाम से समझता भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये दंड जो है वो मैं हूं, तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सॉरी भगवान कहते हैं नीति रश्मि जिगीषताम, जिगीषताम का मतलब होता है जिसको विजयी प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब विजयी प्राप्त करने वालों की इच्छा, बहुत सारे लोगों को हर एक चीज में जो जिस भी फील्ड में आप जाते हो आपकी इच्छा तो होती है ना, आकांक्षा तो होती है कि मैं विजयी प्राप्त करूं। आप अगर कोई स्टडी करते हो तो आप बोलते हो कि भाई चार बच्चों का कंपटीशन है तो मेरी विजय होनी चाहिए। अगर आप किसी स्पोर्ट में भी जाते हो, क्रिकेट में जाते हो या फिर किसी और में, तो भी आप चाहते तो हो कि मैं विजय बनूं। लेकिन यदि अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है और आप सब जो है ना कोई नीति का फॉलो नहीं कर रहे, अपना ही वो एक एम्पायर बना दिया, सारे खिलाड़ी भी अपने हैं और अपनी मर्जी से, कोई रूल नहीं है, बस कोई नीति नहीं है, जैसे तैसे करके आप खेल रहे हो, तो उसमें उस विजय में जो आनंद इतना नहीं आएगा, पहले से ही मैच फिक्स कर दिया है या फिर उसमें आनंद नहीं आएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, नीति, नीति मतलब सदाचार। कोई भी विजय प्राप्त हो और उसमें यदि आप सदाचार पे चलते हो, एकदम सदाचार पे, एकदम अच्छे तरीके से उसको विजय करते हो, जब मतलब छल के बाद यदि जीत होती तो आनंद नहीं आता, लेकिन जो नीति के साथ आप कार्य करते हो और उसमें यदि आपको विजय प्राप्त होती है तो उसमें बहुत आनंद होता है। तो भगवान कहते हैं नीति रश्मि जीत, जो किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाला है उसमें मैं नीति हूं। और आगे भगवान कहते हैं मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी चीज को सीक्रेट रखना चाहते हो ना, तब उसका एक ही तरीका है कि आप शांत रहो, आप मौन रहो, आप चुप रहो। आपके मुख में आपका राज तभी तक राज है जब तक आप चुप हो। अगर एक बार आपका राज आपके मुख से बाहर निकल जाए तो आप उसके कैदी हो। यानी आपका सीक्रेट तब तक आपका कैदी है जब तक आपने उसको बोला नहीं, और जब आपने उसको बोल दिया तो आप उसके कैदी हो। फिर क्या बताओगे? हम क्या करते हैं, किसी न किसी को बताते हैं और बोलते हैं देखो मैंने अपनी सीक्रेट बात तुम्हें बताई है, तुम किसी को बताओगी तो नहीं? बोल नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वो किसी और को जाके बोलेगी देखो मैंने उसकी बात तुम्हें बता दी, तुम किसी को बताना नहीं? वो बोलेगी नहीं। इस तरह करते करते सबको बोलते जाएंगे कि आप बताना नहीं, लेकिन एक बार मुख से निकल गया ना तो समझो कि वो अब राज नहीं रहा। राज तब तक है, सीक्रेट तब तक है जब तक कि आपने उसको अपने मुख से बाहर नहीं निकाला, चुप रहे। तो यहाँ भगवान कहते हैं राजदारियों में जो राज मतलब रहस्यों में मैं मौन हूँ, यानी शांति, कोई भी आवाज अगर नहीं निकलती है तो समझो वो मेरा पावर है जिसके कारण ना उसको उस चीज को गोपनीय रखा गया। क्योंकि मौन रहने से श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति होती है। जल्दी उन्नति होती है, आप ज्यादातर जो सोचना है, जो सुना आपने उसके बारे में भी बोलना नहीं है, जो ज्यादा आप कुछ भी ऐसी कोई बात, यानी भगवान से रिलेटेड अगर कोई बात है तो बोलना। श्रीला प्रभुपाद हमें उपदेश अमृत में बताते हैं कि जो बोलता रहता है ना, जो व्यक्ति वो ऐसे करता है जैसे मेंढक है ना, मेंढक वो हमेशा टर 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 करता रहता है। रात जब हो जाती है तो शाम को दिखता नहीं है मेंढक कहाँ पर है। अगर मेंढक जो है ना वो चुप करके बैठे, मौन धारण करे ना, तो फिर सांप उसको खा ही नहीं सकता, सांप को दिखता ही नहीं होता है वो। लेकिन वो क्योंकि बोल रहा होता है टर टर टर, तो सांप को पता चल जाता है यहां से आवाज आ रही है, तो घप करके खा जाता है। उसी तरह से जो हम भी है ना, काल की ओर और भी ज्यादा जा रहे हैं। जब जैसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, किसी की निंदा करेंगे, किसी के बारे में कुछ बोलेंगे, वहां से सुना उसको बोल देंगे, उसने बोला उसको बोल देंगे, तो ये जो है वो हमें काल की ओर घसीट रही है। लेकिन जब हम कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण के विषय में बात करते हैं, वास्तव में वो कार्य जो है वो हमें काल के हाथों से बचाने वाला होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो भगवान की बात होती है, लेकिन फिजूल बातों में हमें शांत रहना चाहिए, मौन। इसे भगवान कहते हैं गुप्त रहस्यों में मैं मौन हूं। और आगे भगवान कहते हैं बुद्धि सॉरी ज्ञान ज्ञानम ज्ञान वतामह, जो ज्ञानवान है उनके अंदर में ज्ञान हो। ज्ञानी व्यक्ति वह है, श्रील प्रभुपाद जी ने ज्ञानी व्यक्ति की बहुत ही सुंदर डेफिनेशन बताई है, वो है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सकता है। हम इस भौतिक जगत में ज्ञानी किसको सोचते हैं, जो दूसरों को चीट करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाता है, बस इतना है। ये कितना ज्ञानी है कि वो कितने सारे को चीट कर रहा है और खुद अपने जीवन के लिए बहुत सारा धन कमा रहा है। वास्तव में वो फूल नंबर वन है, क्योंकि वो जितना भी धन कमाएगा, जितना भी अर्जित करेगा, वो यहाँ पर छोड़ के जाएगा। किन के लिए? जो मेहनत नहीं करेंगे वो लोग को मिल जाएगा। अभी उसने इतनी सारी मेहनत भी की और उसको तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो यहीं पर छोड़ के चला जाएगा। धन किसी के साथ नहीं जाता। लेकिन ज्ञानी का क्या मतलब, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो आत्मा तथा शरीर में अंतर कर सके। कौन सा अंतर? कि वो परा है और ये जो शरीर है वो भगवान की अपरा प्रकृति है और आत्मा भगवान की परा प्रकृति है। और जब ये ज्ञान किसी को हो जाता है तो वो वास्तविक ज्ञान है, वो ज्ञान कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन यहाँ भौतिक जगत में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बहुत उनके पास है ना भौतिक ज्ञान होता है, भले ही वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। लेकिन देखते हैं हम बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर होते हैं और इंसाइक्लोपीडिया और ये सब जो भी है उनमें बहुत बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त तो नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उनके पास जो भी ज्ञान है वो कृष्ण से ही प्राप्त होता है। ये जो भगवान के षडेश्वरियां हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञान है, सुंदरता है, शक्ति है, वैराग्य है, बल है, और ये सारे भगवान के ही ऐश्वर्य हैं। ये भक्तों में भी हो सकते हैं और अभक्तों में भी हो सकते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते ये तो भगवान का भक्त भी नहीं है, फिर भी भगवान, ये अगर भगवान का ऐश्वर्य है तो फिर उसको क्यों मिला, उसको सुंदरता क्यों मिली, उसको इतना सारा ऐश्वर्य धन क्यों मिला? तो फिर ये जो है वो उनको अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। लेकिन अगर उनको आप, मेन क्या है कि आप अपने इन क्वालिटीज को यूज कैसे करते हो। अभी कोई कोई जो असुर होते हैं उनके पास भी बहुत सारा ज्ञान होता है, बल होता है, बहुत सारे ऐश्वर्य होता है, धन होता है, लेकिन वो लोग किस तरह से उसको यूज करते हैं? केवल इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन तो फिर वो सारा जो उनका वैभव होता है, वो ज्ञान होता है, वो बल होता है, वो सब असुरी हो जाता है। भले ही वो भगवान का ही दिया हुआ है लेकिन वो तब असुरी हो जाता है जब उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता। और अगर उसको कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है तो फिर वही जो है वो दैवीय गुण हो जाते हैं, दैवी गुण हो जाते हैं। जैसे अगर कोई सिंगर हो, अभी सिंगर को उसकी स्वीट आवाज जो मिली है, इतनी अच्छी वो सिंगिंग कर सक रही है, तो फिर ये जो स्वीट वॉइस है, जो वॉइस ये भगवान ने दी उसको, ये गुण तो भगवान का है, परंतु उसके पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी इस योग्यता को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यूज करती है या फिर भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए या भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए यूज कर रहे। तो ये उसका अपना स्वभाव है कि उसके द्वारा वो क्या कर रहे, तो जिस तरह से उसको यूज करेंगे उसके अनुसार उसको कर्मों के अनुसार जन्म मिलेगा। लेकिन जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, जो भी धन है, जो भी सुंदरता है, वो भगवान की ही दी हुई है, ये सब भगवान का ही है। इसे भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञानवतामः। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं कि भौतिक जगत में किस तरह से, कौन कौन सी वस्तुओं को देखकर आप मुझे स्मरण करते हो। तो जो भक्त होता है वो जब भी कोई बहुत ही सुंदर वस्तु को देखता है या बहुत ही वैभवशाली या शक्तिशाली किसी वस्तु को देखता है तो वो फौरन से भगवान को स्मरण करता है। जैसे जब हनुमान जी पहली बार रावण को देखा, पहली बार नहीं, दूसरी पहली बार तो उन्होंने वहां पर देखा जब वो आए थे रात को लंका में और रावण सो रहे थे, उस समय तो कोई बातचीत नहीं हुई, वो तो सो रहे थे। लेकिन दूसरी बार जब मेघनाथ जी उसे पकड़ के आए थे और मेघनाथ ने जब हनुमान को पकड़ा था और जब हनुमान रावण की सभा में आए तो रावण को देखा ना, जब रावण का वैभव देखा तो फिर हैरान हो गए। हनुमान जी ने कहा इतना वैभव है इसके पास, इतना ऐश्वर्य है इसको, ये सब भगवान की कृपा है इसके ऊपर और इसको ये सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और ये कितना मूर्ख है कि भगवान की ही शक्ति का दुरुपयोग करके भगवान की शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। भगवान की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और भगवान की आराधनीय शक्ति को प्राप्त करना चाह रहा है। तो वास्तव में ये सब भगवान की कृपा, तो मतलब जो भक्त होता है, यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है,
भक्त भले किसी असुर को भी देखता है ना, तो भी वो उसको देखकर भी भगवान को स्मरण कर सकता है कि इसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज, ये सब भगवान की कृपा है। जिस तरह हनुमान जी रावण को देखकर भी वो भगवान को और भी अधिक स्मरण कर रहे हैं, वो रावण जो ये सारी अपोलेंसेस को, ये सारी विभूतियों को प्राप्त करके भगवान से दूर हो रहा है, स्वयं को भगवान समझ रहा है, भगवान उसको सरेंडर नहीं कर रहा है सिर्फ अपनी इन क्वालिटीज की वजह से, अपने इन गुणों की वजह से, और वही क्वालिटीज को देखकर, वही गुणों को देखकर हनुमान जी और भी भगवान के करीब आ रहे हैं और भी भगवान को, भगवान का स्मरण उनका पक्का हो रहा है। तो भक्त की यही एक दृढ़ता है, एक यही क्वालिटी है सबसे बड़ी, कि वो जब भी किसी अच्छी चीज को देखता है, ग्रेट चीज को देखता है, जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री में कोई वस्तु उसको दिखती है, जब कोई सुंदरता हो, जब कोई बल हो, जब कोई अच्छा लगता है ना, तो वो सारा का सारा जो है ना, वो सोचता है ये कृष्ण का ही है, ये कृष्ण की कृपा से है, तो वो हर एक वस्तु को देखकर कृष्ण को स्मरण करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।